श्यावर रामचंद्र की है, मोर मुक्त वंशी वाले की है। प्रेम का जो मार्ग है उसमें भी आगे जाकर के एकता हो जाती है, और ज्ञान का जो मार्ग है उसमें भी आगे जाकर एकता हो जाती है। ज्ञान के मार्ग के बीच के मां जीवात्मा और परमात्मा की एकता होती है, और वह एकता जाति से एकता नहीं, स्वरूप से भी एकता हो जाती है। स्वरूप भी अलग अलग नहीं रहती, और भक्ति के मार्ग में जो एकता होती है वो तीन की एकता होती है, प्रेम और प्रेमास्पद और प्रेम, यानी भक्त भगवान और भक्ति, भक्ति कहते हैं प्रेम कहते, इन तीनों की एकता होती है, और वहां दो की एकता होती है। ज्ञान के मार्ग वो दो की एकता अभेद के मार्ग से होने वाली एकता स्वरूप से जाति से दोनों से होती है, वहां फिर स्वरूप की भी भिन्नता नहीं रहती और जाति की भी भिन्नता नहीं रहती, नाम रूप की भी भिन्नता नहीं रहती, ये कोई भी चीज की भिन्नता नहीं रहती। और यहां भक्ति के मार्ग में जो एकता होती है ये नाम रूप की भिन्नता रहती है, जब स्वरूप की भिन्नता हो गई तो फिर नाम की भिन्नता हो गई, रूप अलग हो गया तो नाम अलग हो गया। जाति से तो एक है किंतु स्वरूप अलग है, इस वास्ते अलग नाम है। जो भक्ति करता है उसका नाम भक्त है, और जिसकी भक्ति करता है उसका नाम भगवान है, और जो संबंध भक्ति का है प्रेम का है तो उसका नाम भक्ति है प्रेम है। वस्तु भी स्वरूप से तीनों अलग अलग है और जाति से तीनों एक ही है, तब ही तो भगवान का भक्त जो है, भगवान एक आनंद स्वरूप है, उस आनंदमय को आनंद देता है। सारी दुनिया को तो आनंद देते भगवान, और भगवान को आनंद देता भक्त। भक्त जो है उसको हर वक्त आह्लादित करता रहता है, उसकी सारी चेष्टा भगवान के लिए होती है, और उस समय में भगवान की जो चेष्टा होती है, लीला होती है, वो भक्त के लिए होती है, एक दूसरे के लिए होती है, और वो लीला है वो प्रेममय है। तो प्रेम भी वहां मूर्तिमान होकर के रहता है, तो प्रेमी और प्रेमास्पद और प्रेम ये स्वरूप से अलग अलग है, नाम तीनों की अलग अलग है, स्वरूप तीनों की अलग अलग है, किंतु उनकी जो धातु है वो एक ही। वास्तव के बीच के मां कोई चेतन पदार्थ को समझाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम आपको समझा सकें, जड़ चीज को लेकर के ही समझाया जाता है। जैसे आकाश के बीच के मां निराकार रूप से जल रहता है, क्यों आकाश से जल बरसता है, यदि आकाश में जल हो ही नहीं तो बरसे कहां से, वो पहले से ही है, किंतु वो ही जल फिर बादल के रूप में आ जाता है, और बादल के रूप में आकर वो बादल चूरने लगता है तो वो ही जल बूंदों के रूप में बन जाता है, और शीत पाता है तो वो ही जल बर्फ के रूप में ओड़ों के रूप में बन जाता है, तो उसको गोल गोल होते उसको ओड़ा कहते हैं, और समझो कि जो एक कपूर की माफक पीछे कपूर की माफक जो चीज बस उसको बर्फ कहते हैं, जो तबका पड़े उसको बूंदे कहते हैं, आकाश के वहां रुई कैसे फैल दिखते उसको बादल कहते हैं। तो आकृति भी सबकी भिन्न भिन्न और नाम भी सबके भिन्न भिन्न, किंतु धातु से सब जल ही है, जल से अतिरिक्त और कोई वस्तु उसके वहां नहीं है। तो इसी प्रकार से थी, स्वरूप से अलग अलग होकर, नाम अलग अलग होकर के वस्तु से एक ही है। तो प्रेम और प्रेमास्पद और प्रेमी तीन पदार्थ वहां हुए। तो भक्त की दृष्टि में तो भगवान प्रेमास्पद है और भक्त है सो प्रेमी, और भगवान की दृष्टि में भक्त प्रेमास्पद है और भगवान उसके प्रेमी, तभी तो समानता हुए और तभी एकता हुए, तभी उसका बदला हुए कि ये था मांग प्रपद्यन्ते तां सथे वयामि हम, जो जिस प्रकार मुझको भजते उसको मैं उसी प्रकार भजता हूँ। ये भजंती तू मांग भक्त्या मई ते सुचाप हम, जो भक्ति से मुझको भजते हैं उनके हृदय में मैं, मेरे हृदय में वह रहता है। तो जिस प्रकार भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं, भगवान के हृदय में उसी प्रकार से भक्त रहता है, कोई फर्क नहीं है। भगवान भक्त का ध्यान करता है और भक्त भगवान का।
महाभारत की कथा आपको भीष्म पिता के ध्यान कर रहा
हूँ, महाभारत की शांति पर्व में भीष्म पितामह के पास में जा रहे हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज आप किसका ध्यान करते हो, और ये बात यदि बताने लायक हो है या न मैं उसका पात्र समझ जाऊं तो आप कृपा करके कहें। बोला सरसज्जा पर शयन करते भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहे हैं और मैं भीष्म का ध्यान कर रहा हूँ। भगवान तो सर्वज्ञ है ना। तो भीष्म जी बड़े उत्कोटि के भगवान के भक्त थे। तो इसी प्रकार से थी भगवान के साथ हम लोगों को प्रेम करना चाहिए। भगवान अवतार लेते हैं और अपने भक्तों से दूर भी रहते हैं और निकट भी रहते हैं। मन से और भाव से तो दूर नहीं रहते, निकट ही रहते हैं, शरीर से दूर रहते हैं। जैसे अर्जुन है तो अर्जुन से मिलते खूब प्रेम रहता, दोनों साथ साथ ही रहते। और जब भगवान अर्जुन को छोड़ करके द्वारका को चले जाते तो कितनी दूर तक अर्जुन और साथ में रथ के साथ साथ में चलते, और जब तक भगवान का रथ दिखता रहता तब तक उसको देखते रहते। जब रस नहीं दिखता तब लौट करके घर आ जाते भगवान के उस भाव को हृदय में धारण करके। और ये बात महाभारत में आती है। श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन है, अर्जुन है सो कृष्ण है, देखने की दो मूर्ति है, स्वरूप से एक ही है। इतना प्रेम आप श्री के मां बतलाया जाता था। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि अर्जुन तेरा शत्रु मेरा शत्रु, तेरा मित्र मेरा मित्र। तो ये व्यवहार के मैं तो वास्तु के भीतर के बीच के मां भगवान जब अरे तो अपने पिताजी वसुदेव जी को कह गए। प्रभास क्षेत्र से आकर पिताजी से कह गए वसुदेव जी से कि बलदेव जी तो परलोक सिधार गए और मैं जा रहा हूं, और आपको लेने के लिए अर्जुन आएगा और अर्जुन के साथ ही आप सब लोग उनकी राजधानी में चले जाएं। और सबके चले जाने के साथ ही इस द्वारका को समुद्र अपने में प्रवेश करा लेगा। और अर्जुन है सो मैं हूं और मैं हूं स्वर्ग, ये समझना, ये समझना कि अर्जुन है सो मैं हूं, बस इतनी बात कहकर के भगवान वहां से चल दी। और जाकर के आपने इसी शरीर से थी भगवान अपने परम धाम को सो पधार, मानो जाकर के एक वृक्ष के नीचे चिंता मगन होकर जो बैठे हुए से बैठ गई। भगवान के तो चिंता सो कुछ नहीं है, सब कुल का विध्वंस हो गया, तो एक स्वांग ले आए हूं, तो एक प्रकार से शोक चिन्ह से बैठे थे, पैर एक प्रकार से घोड़ा खड़ा करके इसके ऊपर पैर रख दिया था, और वो पैर एक ऐसा दूर से दिखता था कि मानो कोई मृग का सिर हो। तो व्याध ने समझा कि कोई ये मृग है, तो बाण मारा, तो बाण एक निमित्त हो गया भगवान के परलोक सिधारने में। व्याध ने आकर के देखा कि वो मैंने तो बड़ी भारी हत्या करी, तो मृग नहीं है, तो भगवान क्षमा प्रार्थना करी। भगवान तो किसी के अपराध को मानते ही नहीं, उसको आश्वासन दिया भगवान ने। और फिर भगवान अपने इसी शरीर से अंतर्धान हो गए, परम धाम को चले गए। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि इसी शरीर से क्यों आपने चले गए, कि भविष्य के बीच के वहां जो भगवान श्री कृष्ण जी के जो भक्त होंगे, भगवान का शरीर विनाश हो गया ये उनकी दृष्टि में नहीं रहना चाहिए। भगवान तो नित्य वस्तु है, तो उनका शरीर भी सुनित है, तो उनके उपासना के लिए उपास देव के रूप में भगवान सदा ही कायम है, इसलिए भगवान इस शरीर से चले गए। और वास्तु के मां बात यह है कि भगवान का प्रादुर्भाव और तिरुभाव होता है, केवल भगवान राम के विषय में भी यही बात आती है। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज जैसे इस शरीर से चले गए, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब 11 वर्ष का समय समाप्त होया और भगवान अपने परम धाम को गए, तो आपने इसी शरीर से ही अपने वैष्णव शरीर के मां प्रवेश कर गए। उन्होंने अपना शरीर सरजू के मां त्यागा नहीं, हमारे इस लोक में उनका शरीर नहीं रहा। ये वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंत में लिखा है, कोई भाई देखना चाहो तो देख सकते हैं। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, और एक प्रकार से संसार के कल्याण के लिए आए थे और अपने पधार गए। तो उनका प्रादुर्भाव तिरुभाव है, उत्पत्ति और विनाश नहीं, किंतु प्रतीति होती है, मानो उत्पन्न होते हैं और विनाश होते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में ये बात साफ करके बतला दी कि अजोपि सनभ्यात्मा भूतानाम इसरूपी सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवा न्यात्मा या। मैं अज हुआ और अविनाशी हुआ और संपूर्ण भूतों का ईश्वर हुआ भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर करके और अपनी माया स्थिति में प्रकट होता हूं। तो अपि और सन इस बात को बतला है, अजोपि अज हुआ भी जन्म सा दिखता हूं, जन्मता सा दिखता हूं, अविनाशी हुआ भी विनाश होता सा दिखता हूं, ईश्वर हुआ भी मनुष्य सा दिखता हूं, ये मेरी योग माया से मैं प्रकट होता हूं और अपने अंतर्धान होता हूं। ये शब्दों से भी कह दिया और उदाहरण से भी दिखला दिया। उदाहरण से ये दिखला कि अर्जुन ने कहा कि आप ये कहते हो कि सारा संसार मेरे एक अंश में है, तो वे आपका जो विश्व रूप है वो मैं देखना चाहता हूं, कृपा करके दिखलाओ। तो भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी और आपका विश्व रूप दिखलाया। विश्वरूप दिखलाने के बाद अर्जुन ने कहा कि तेने वे रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र भाव भविष्व मूर्ति हे सहस्र भाव हे विश्वमूर्ति आप उस चतुर्भुज रूप वाले हो जाओ। रीतिनंग दिनंग चक्र हस्त मिच्छामि त्वांग द्रष्टु महंग तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्र भाव विश्वमूर्ति। तो भगवान कहते हैं कि अरे मेरे विश्व रूप को देख करके तुम्हारे को व्यथा क्यों होनी चाहिए, हूं तो मैं वही तुम्हारा सखा कृष्ण, कोई बाघ भालू तो नहीं। माते व्यथा मात विमूढ़ भाव, तुम्हारे में व्यथा नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, मूढ़ भाव नहीं होना चाहिए, और तुम भय रहित होकर के तुम जिस मेरे स्वरूप को देखना चाहते हो लो वही तुम्हारे को दिखलाता हूं। फिर चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और उसके बाद में मनुष्य रूप होकर के और रथ हाँकने लगे। तब अर्जुन ने कहा कि अब मैं यथायोग अपनी प्रकृति में स्थित आया हूं, अब ठीक ठिकाना आया हूं। तो इसके पहले भगवान के दो रूप अर्जुन ने देखे, विश्व रूप और चतुर्भुज रूप, कि मनुष्य रूप के हाथ के मां तो समझो बैत और कोलड़ा है, वहां गधा और शंख कहां, चक्र कहां, समझा। और वहां तो कहते हैं कि चतुर्भुज ने चार भुजा वाले, और जिसके हाथ में साफ करके कहते हैं कि समझो कि चक्र और गदा हाथ में धारण किए हैं। तो भगवान उस दिव रूप से प्रकट हुए, देव रूप से, मनुष्य रूप से नहीं, उस दिव रूप को देव रूप को देखना चाहता हूं। और फिर कहते हैं कि इस मनुष्य रूप को देख करके अब मैं प्रकृति में स्थित हूं। तो विश्व रूप भी अर्जुन ने देखा, चतुर्भुज रूप भी देखा, और दो भुजा वाला दिखते ही थे। तो अब ये विचार करना है कि वो विश्व रूप और चतुर्भुज कहां से आए, कहां गए, उसकी मिट्टी तो रहनी चाहिए थी ना, यहाँ तो कुछ नहीं रहा, उनका प्रादुर्भाव होना और तिरोभाव होना। तो यही भगवान का समझो कि प्रकट होना, तिरोभाव होना ही इस श्लोक में बताया जाता है। उदाहरण से आपने गीता की ग्यारहवीं अध्याय में दिखला दिया, शब्दों के बीच में तो चौथी अध्याय के छठे श्लोक में कहा, जो पी सनभ्यात्मा भूतानाम प्रकृति स्वाम धीसा संभव में आत्मा आया, और कृष्ण के रूप में तो भगवान स्थित है ही, और फिर चतुर्भुज रूप में और विश्व रूप में उदाहरण से वहां दिखला दिया। तो इसी प्रकार से भगवान आते हैं और प्रकट होते हैं और चले जाते हैं। तो भगवान के साथ के मन हम लोगों को प्रेम करना चाहिए, विशुद्ध प्रेम करना चाहिए, अनंत प्रेम करना चाहिए। तो इसी प्रकार से थी गोपियों का जो भगवान के साथ में प्रेम था वो विशुद्ध प्रेम था, अनन्य प्रेम था। भगवान जो कुछ लीला करते थे उसे गोपियों के लिए, जब गोपियों के पास रहकर एकांत स्थान में, और गोपियां जो कुछ लीला करती थी वो भगवान के लिए, अपने लिए किसी नहीं। राधिका जी जो है वो अलादीनी शक्ति थी, और उन्हीं की समझो कि अंश रूपा शक्तियां ये सब थी, जो जितनी और शक्तियां थी वे भगवान के परम धाम से आई थी, और भगवान के परम धाम को ही एक प्रकार से चली गई। भगवान के परम धाम के बीच के मां जो अति सामीप जो भक्त रहते हैं वे लीला करने के लिए भगवान के साथ में उनके परकर बनकर करके आते हैं, और लीला समाप्त करके उनके साथ में चले जाते हैं। उन भक्तों को हम कारक पुरुष भी कहते हैं। समझो कि अधिकारी पुरुष भी कहते हैं जो वहां से आते हैं, उन्हीं में ही समझो कि अधिकारी पुरुषों में ही वेदव्यास जी महाराज भी एक अधिकारी पुरुष थे, कारक पुरुष थे। तो अर्जुन का जो संबंध है वो भगवान के साथ में पहले से ही है। इसके पहले नरनारायण के रूप में थे, सबको इस बात को कहते हैं, और ऋषि लोग जो है ऋषियों ने ये बात जगह जगह कही है। महाभारत के वहां पढ़ोगे तो जगह जगह ये प्रसंग आपको मिलेगा कि श्री कृष्ण और अर्जुन पूर्व के बीच में नरनारायण ऋषि के रूप में थे, और आदि के बीच में समझो कि उसके पहले भगवान श्री कृष्ण जी तो साक्षात महाविष्णु या विष्णु के रूप में और अर्जुन ऐसो भक्त के रूप में, और उसके पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति के और पहले हम चलें कि तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही, विज्ञानानंद निर्गुण ब्रह्म ही श्री विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं सृष्टि की आदि में, त्रेता युग में श्री राम के रूप में और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, एक ही है सगुण निर्गुण साकार निराकार। और भगवान श्री राम श्री कृष्ण और विष्णु और शुद्ध ब्रह्म और आपने ब्रह्म के बीच के मत सगुण निराकार और निर्गुण निराकार सब वस्तु स्थिति एक ही है, सब मिलकर के एक ही चीज है। और सब जगह सब प्रकार की योग्यता शक्ति और ज्ञान और सब जगह पूर्ण है। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप जो है जब जब अवतार लेता है तब तब संसार के हित के लिए आकर के अवतार लेते हैं, उसी भगवान से हम लोगों को प्रेम करना चाहिए। अभी समझो कि निराकार रूप से सब जगह मौजूद है ही और सगुण साकार रूप में मन से उसका आह्वान करना चाहिए, और मन से आह्वान कर करके और मन से ही हम लोगों को उससे मिलना चाहिए। जैसे गीता में बतला है मच्चिता मदगत प्राणा बोध यंत परस्पर कथियंत मांग नित्यं तुष्यंती च रमंती च। मच्चिता जिनका मेरे में चित है, भगवान कहते हैं उनको मच्चिता, भगवान में हमारा चित वास करे, चित में भगवान का जो स्वरूप है वो नित्य वास करे हमारे, तभी हम कह सकते हैं कि ऐसे जो पुरुष भगवान का कहना उनके लिए है कि मत चिता, कि मेरे में जिनका चित हर वक्त बस है वह मत चिता। इसके लिए हम उदाहरण आपको क्या दे सकते हैं, जड़ पदार्थों के मां इसके लिए कोई उदाहरण नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि जो उच्च कोटि के भगवान के जितने जो भक्त पूर्व में हो चुके हैं उनका उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे हनुमान जी महाराज है, जैसे भक्त प्रहलाद है, उनको सब जगह हर वक्त भगवान दिखते हैं, जैसे स्त्रियों के बीच के मां मीराबाई है, गोपियां हैं, और भी एक प्रकार से थी नीच जाति के मां भी जैसे सबरी भिलनी है, पुरुषों में जैसे गु है केवट है, और इसी प्रकार से थी समझो कि राजा महाराजाओं के बीच में जैसे अमरीश है, इत्यादि जो बहुत उच्च कोटि के राजा हुए हैं, चोल राजा भी बहुत उच्च कोटि के थे किंतु अमरीश के समान नहीं, जैसे भीष्म पितामह है, तो ये बड़े उच्च कोटि के जो ब्रह्मचारी गृहस्थी राजा लोग हुए, सनकादिक है, तो ये सभी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। सनकादिकों को तो हम समझो कि अवतार भी मानते हैं और भक्त भी मानते हैं, दोनों श्रेणी के मां, जैसे शिव जी को हम भक्त भी मानते हैं अवतार भी मानते हैं, जैसे बलदेव जी को अंशावतार भी मानते हैं एक प्रकार से थी भगवान का भक्त भी मानते हैं। तो इस प्रकार से ये समझो कि उच्च कोटि के पुरुष हुए तो उनका जो प्रेम भगवान के मां नित्य प्रेम था, और अपनता तो प्रेम के साथ ही, अपनता को लेकर तो प्रेम होता है, भगवान के मां अपनता और भगवान के मां प्रेम, इसी प्रकार का प्रेम हम लोगों को करना चाहिए। तो भगवान का आह्वान करके भगवान का नेत्रों से दर्शन, मन से चिंतन, बुद्धि से निश्चय, वाणी से वार्तालाप, शरीर से स्पर्श, तो मच्चिता मदगत प्राण, भगवान में जिनका चित्त भगवान कहते वो मच्चिता, और भगवान के लिए जिनका जीवन है, भगवान के बिना एक क्षण भी जिनको अपना जीवन अच्छा नहीं लगता, भगवान के बिना जो इस संसार में रह नहीं सकते, जैसे जल के बिना मच्छी रह नहीं सकती, तद विषम ने परम व्याकुलता, ये भी एक प्रकार से थी साधन अवस्था ही है, किंतु ये मैं जो बतला रहा हूँ ये उसके भी परे की अवस्था है। उसका विषम हुआ तब तो परम व्याकुल था, उसका विषम होता ही नहीं उनके। वो तो नित हर वक्त देखते रहते हैं, योमांग पश्यति सर्वत्र सर्वंग चमयी पश्यति और तस्यांग न प्रणश्यामी सत्य में न प्रणश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है अपने अनुभव से और सबको मुझ में देखता है, उससे मैं कभी अलग नहीं हो सकता, वो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। संसार के मां उसके लिए कहा कि सर्वभूत चितम योमांग भजते एकत्व आश्रितो सर्वथा वर्तमान सहयोगी मई वर्तते। सारे भूतों में स्थित जो मैं हूँ ऐसे मुझ परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर के मुझ में तन्मय होकर के और फिर संसार के बीच में जो विचरता है वो मेरे में विचरता है, मुझ में उसका विचरण है, उसकी दृष्टि में मेरे स्वादूसी वस्तु नहीं है, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो ऐसा जो होकर के रहना, तो मन से भगवान का आह्वान करके उनका दर्शन भाषण सबसे वार्तालाप करते रहना और बोध ही अंतर परस्पर, जैसे गोपियां आप श्री के वहां वो भगवान की बातें करती रहा करती थी, उससे भगवान के तत्व रहस्य को जनाती थी, भगवान का ये तत्व है, भगवान का ये रहस्य है, भगवान के गुणों के विषय में और प्रभाव के विषय में बातचीत करती रहती थी। वो बोध ही अंतर परस्पर कथियंत मांग नित्यम और भगवान के विषय को नित्य कहना दूसरी बात सही कहना, जैसे हम लोग भगवान की भी बात कहते हैं दूसरी भी बात कहते हैं ऐसे नहीं, जो भगवान की उच्च कोटि के भक्त होते हैं वे भगवान की बात कहते हैं दूसरी बात कहते नहीं, दूसरी बात के लिए उनके समझो मौन है और दूसरी बात नहीं बोलते। तो कथियंत मांग नित्य नित्य सदा ही ऐसा उनके स्वनेम है और प्रसन्नती चरमती से उसके बीच के मई रमन करते हैं। रमन करना यही रमन करना नेत्रों से भगवान को देखना, ये नेत्रों के द्वारा भगवान में रमन है, भगवान की बातों को सुन सुन करके मुग्ध होना ये कान के द्वारा भगवान के मां रमन है, वाणी से भगवान के प्रति वचन बोलना वो वाणी से रमन है और भगवान से मन से खूब प्यार करना ये मन से भगवान के मां रमन है। समझो हाथों से भगवान के चरण आदि को छूना ये हाथों से भगवान के मां रमन है। तो इस प्रकार से अपना मन और इंद्रियां सब भगवान में लगा देना। बोलो नासिका का रमन क्या कि नासिका से भगवान के मां सुगंध का ग्रहण करना ये नासिका के द्वारा रमन है। बोलो जीवा का से रमन क्या, जीवा पर तो दो इंद्रिय वाणी से बोलना तो आप कह सो ठीक है, दूसरा जीवा के द्वारा समझो कि भगवान का जो प्रसाद का आस्वादन देना तो ये जीवा के द्वारा रमन हुआ। सारी इंद्रियां भगवान के मन लगा देना ये इंद्रियों के द्वारा मन लगा देना, मन के द्वारा बुद्धि लगा देना, बुद्धि के द्वारा भगवान के रमन है। तो वे भगवान कहते हैं कि जो मुझ में रमन करते हैं और इस प्रकार से समझो कि आनंद के मां मुग्ध होते हैं वो संतोष लाभ करना तू संति मन संतुष्ट रहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि ये साधन अवस्था है, ये मानसिक सब मिलन है, प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष मिलन तो इसका फल है कि तेसांग सतत युक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वकम ददानु बुद्धि योगम तम ये न मामोपयंति ते। उन प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक जो मुझको भजने वाले और नित्य निरंतर अंतर नहीं पड़ता, नित्य निरंतर सो मुझको भजते हैं मन से, इस प्रकार से नित्य निरंतर जो मुझको भजने वाले हैं उनके बुद्धि के बीच में मैं वे ज्ञान देता हूँ कि जिससे मुझको एकदम प्रत्यक्ष साक्षात प्राप्त हो जाते हैं, उसका फल साक्षात प्राप्ति है। यहाँ तो उसके पहले तो प्राप्ति तो नहीं है, साधन अवस्था है, तो ये उसका फिर फल है। फल की तरफ तो उनको ख्याल ही क्यों करना, अपना